جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، والعاقبۃ للمتقین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اچھا وہی تکبر کے بارے میں ہی باتیں چل رہی تھی، لیکن عنوان الگ الگ تھا. اس سے پہلے جو بات تھی وہ کسی کو حقیر نہ سمجھے. ابھی ہے مخلوق کی وجہ سے عمل نہیں چھوڑنا، مخلوق کی وجہ سے عمل نہیں چھوڑنا چاہیے. تکبر مع اللہ کی صورت ہے، یہ بھی تکبر کی صورتوں میں سے ایک. تکبر مع اللہ ہے، اللہ کے ساتھ تکبر. ایک ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تکبر میں جو غلو ہو جاتا ہے، تکبر میں بھی غلو ہے، تکبر میں جو غلو جب غلو ہو جاتا ہے، اس کی جڑ پختہ ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالی کے ساتھ بھی تکبر کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تکبر کرنے لگتا ہے. مثلا دعا میں عاجزی اور خشوع کر رہا تھا، رونے کی صورت بنا کر گڑ گڑا رہا تھا، رونے کی صورت بنا کر گڑ گڑا رہا تھا کہ سامنے سے کوئی دوسرا شخص آ گیا تو اب گڑ گڑانا چھوڑ دیا، کہ دیکھنے والے کی نظر میں سبکی نہ ہو، یعنی نیچا نہ ہو جائے کہ دیکھا یہ رو رہا ہے، تو وہ دیکھا تو اس نے بند کر دیا. یہ تکبر مع اللہ ہے کہ اس کو اللہ کے سامنے عاجزی اور ذلت کی صورت بنانے سے بھی دوسروں کی نظر میں ذلت اور عار آتی ہے. اللہ کے سامنے عاجزی اور ذلت کی صورت بنانے سے بھی دوسروں کی نظر میں ذلت اور عار آتی ہے، تو یہ تکبر مع اللہ ہوا. شرم عار آتی ہے، یعنی شرم آتی ہے. جی، بس مخلوق کے لیے کسی عمل عبادت کو ترک کرنا تکبر ہے. مخلوق کے لیے کسی عمل اور عبادت کو ترک کرنا تکبر ہے. اس کی وجہ سے چھوڑنا بھی تکبر، اس کے لیے کرنا بھی تکبر. تو جاوے کدھر؟ پہلے جو ہم نے پڑھا وہ مخلوق کے لیے کرنا، یہ بھی تکبر ہے کہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. تو تکبر مع الناس اس کو کہتے ہیں، اور تکبر مع الخلق تو برا ہے، اس کو خلق کہتے ہیں. تکبر لوگوں کے ساتھ اور تکبر مخلوق کے ساتھ تو برا ہے ہی، لیکن اللہ جل شانہ کے ساتھ تکبر کرنا بدترین قسم کا تکبر ہے. بہت سارے لوگ تو اللہ کے حکم کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، سمجھے نا، کسی نے کچھ ستایا تو اللہ کا حکم چھوڑ دیا، تو یہ تکبر مع اللہ ہو گیا کہ تم کس کو کس کا حکم چھوڑ دیا، اللہ کو اپنا بڑائی دکھاتے ہیں. ہاں، بہت سارے لوگ کوئی ایسی پریشانی آئی تو کیا ہوا، اعمال چھوڑ دیے، نماز چھوڑ دی، پردہ چھوڑ دیا، یہ چھوڑ دیا، تو یہ سب کیا ہے، تو یہ تکبر مع اللہ ہو جاتا ہے. جی، مثلاً ایک شخص دعا میں روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے یا رونے کا منہ بناتا ہے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ عمل پسندیدہ عمل ہے. لیکن کسی اور کے سامنے اپنی دعا میں یہ عمل کرتے ہوئے اگر انسان یہ محسوس کرے کہ میری ذلت ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے میں اپنی خفت محسوس کر رہا ہے، اپنے آپ کو شرم محسوس کر رہا ہے. اللہ کے سامنے عاجزی تو عبادت ہے. تو بعضے آدمی بعضوں کے دیکھنے کی وجہ سے چھوڑ دیتے، اور بعضے بعضوں کے دیکھنے کی وجہ سے اور کرتے، تو یہ بھی تکبر کی ریا آ گیا، اور وہ بھی تکبر مع اللہ، وہ تکبر مع الناس ہوا کہ لوگوں کے دکھانے کے لیے کیا، تکبر مع الناس ہوا. اور یہ अल्लाह से शर्म होकर छोड़ दिया तो तकब्बुर तो दोनों तरीके से पकड़े गए। तो उसका मतलब ये कि वो शख्स अल्लाह ताला के सामने आजीजी करने में अपनी खिफत महसूस कर रहा है, अल अयाज़ु बिल्ला, ये बहुत खतरनाक किस्म का तकब्बुर है। मस्कूरा इरशाद के आखिर में हजरत वाला ने उसूल बयान फरमा दिया कि बस मखलूक के लिए किसी भी अमल इबादत को तर्क करना तकब्बुर है। मखलूक के लिए किसी भी अमल इबादत को तर्क करना तकब्बुर है, जिस तरह मखलूक के लिए अमल करना रियाकारी और दिखावा है, रियाकारी है ना, मखलूक के लिए अमल करना रियाकारी और दिखावा है, यानी मखलूक के खातिर अमल करना कि मखलूक मुझे देखकर मुझे इबादत गुजार समझे, जिस तरह ये अमल रिया है बल्कि शिर्क के करीब पहुंच जाता है, इसी तरह तर के अमल लिल खल्क भी जायज नहीं। तर के अमल मखलूक के लिए मखलूक की वजह से अमल को छोड़ना ये भी जायज नहीं, मखलूक की वजह से अमल करना ये भी जायज नहीं। या अल्लाह, तो हम किधर दीन में है फिर तो, क्योंकि हमारा हर काम या तो मखलूक की वजह से हो रहा है या मखलूक की वजह से छूट रहा है। मखलूक की वजह से छूटता है तो कभी कभी उसमें क्या धोखा होता है कि तेरी रिया हो जाएगी, छोड़ देता है, तो रिया के डर से छोड़ना ये भी रिया है। इसलिए ये तर्क अमल या तो रिया होगा या तकब्बुर में दाखिल होगा, दोनों में से कोई चीज होगी। तकब्बुर मा अल्लाह की मिसाल, मसलन नमाज का वक्त आ गया और आप उसी वक्त ऐसी जगह पर है जहां नमाज का माहौल नहीं। अब अगर आप वहां नमाज पढ़ने से इसलिए शर्माए कि लोग मुझे नमाज पढ़ता देखकर मालूम नहीं क्या समझेंगे, अल अयाज़ु बिल्ला, तो ये तर्क अमल लिल खल्क है जो जायज नहीं है। आजकल बहुत कसरत से सूरत पेश आती रहती है, मसलन जो लोग हवाई जहाज में सफर करते हैं उन्होंने ये समझ लिया है कि जहाज में नमाज माफ है, जहाज में नमाज माफ है, और नमाज को छोड़ने की वजह से, सिर्फ छोड़ने की वजह सिर्फ ये होती है कि सब लोग तो बैठे हैं, अब अगर मैं उन सब के सामने खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा तो एक भद्दी सूरत पैदा हो जाएगी, यानी खराब सूरत पैदा हो जाएगी, अल अयाज़ु बिल्ला, अल्लाह की पनाह। नमाज तो अल्लाह ताला के हुजूरी आजिजी जाहिर करने का एक तरीका है। अब जो शख्स उस वक्त नमाज को तर्क कर रहा है वो मखलूक के सामने इस आजिजी का इजहार नहीं करना चाह रहा है, इसलिए कि इससे मेरी मेरी हेटी होगी, मेरी जिल्लत होगी, तो ये सूरत तकब्बुर मा अल्लाह है। ये तो हवाई जहाज की मिसाल दी। बाज मरतबा घूमने जाते हैं, टूर पर गए हैं, अब वहां नमाज पढ़ना, बोले पता नहीं कैसे लगेंगे, या एक ग्रुप साथ में गया है और उसमें नमाजी लोग नहीं है, हम उनके सामने नमाज पढ़ेंगे तो हम छोड़ देते हैं उनकी वजह से, तो ये नहीं, कई सूरतें, चाहे बस का सफर हो, हाँ कोई और वजह हो कि बस खड़ी नहीं रही, पानी नहीं मिला, हाँ, या कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहां पढ़ सके, तो और सूरत है, लेकिन इस वजह से कि लोग क्या समझेंगे, ये चीज गलत है। गैर मुस्लिम मुल्कों में मेरा अक्सर जाना होता है, हजरत मुफ्ती साहब का, वहां बकसरत ये बात देखने में आती है कि ऐसे मकामात पर जहां गैर मुस्लिमों की आमद और रफ्त है, आना जाना है गैर मुस्लिमों का, या जहां गैर मुस्लिम कसरत से मौजूद है, वहां बाज मुसलमान नमाज पढ़ने से कतराते, यानी शर्म महसूस करते, इसलिए कतराते हैं, इसलिए शर्म महसूस करते हैं कि अगर हम यहां नमाज पढ़ेंगे तो हम उनके सामने तमाशा बन जाएंगे, एक खिलौना बन जाएंगे। अब इस डर से नमाज छोड़ना कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गैर मुस्लिम लोग हमारा मजाक उड़ाए और हमें तमाशा समझे, और इस नमाज की हैयत को जिल्लत की हैयत समझकर तर्क करना, और दूसरे लोगों के सामने इस हैयत में आने से परहेज करना, ये तकब्बुर मा अल्लाह है। वाकईतन बाज जगह ऐसी है कि अगर आदमी वहां नमाज पढ़े तो एक तमाशा बन जाता है और लोग आकर देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। जी, कुंदलुस के एयरपोर्ट पर नमाज। अब तो चूंकि मुसलमान हर जगह पहुंच गए हैं, मुसलमान हर जगह पहुंच गए, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह नमाज इतनी अजनबी नहीं रही। मुझे तो ऐसी ऐसी जगहों पर नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ जहां एक इंसान भी कलमा पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा हसरत मुझे उंदलुस में हुई। वो उंदलुस जहां मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की, उंदलुस मुसलमानों ने 800 तक हुकूमत की और 800 साल तक जिसकी फिजाओं में अजान की आवाजें गूंजती रही। जब मैं वहां एयरपोर्ट पर उतरा तो नमाज का वक्त था। नमाज पढ़ने के लिए एक कोना तलाश किया ताकि वहां नमाज अदा करे। मेरे साथ एक दोस्त भी थे। चुनांचे एक गोशे में, एक कोने में हम दोनों ने नमाज शुरू कर दी। वो गोशा, वो कोना ऐसा नहीं था जो बहुत नुमाया हो, यानी सबको दिखाई देता हो, इसलिए कि आदमी नमाज पढ़ने के लिए ऐसा कोना तलाश करता है जो जरा आड़ में हो। लेकिन मैंने दुनिया में लोगों के लिए नमाज को इतनी अनजानी और अचुंबी महसूस नहीं की। तो हर जगह पर नमाज पढ़ता था, लेकिन हर जगह पर मैंने लोगों के लिए नमाज इतनी अजीब चीज महसूस नहीं की जैसी वहां महसूस की। कहां पर? जहां मुसलमानों ने 800 साल हुकूमतें की, वहां पर उनको नमाज ऐसी महसूस हुई। तो मुसलमान कहां गए? अल्लाह, ऐसी महसूस की। पहले तो हमें नमाज पढ़ता देखकर दो चार आदमी खड़े हो गए, फिर वो लोग दूसरों को बुला बुला कर लाए कि देखो ये क्या हो रहा है। फिर तो बाकायदा हमें देखने के लिए ठट के ठट लग गए, यानी एक जमात और ग्रुप के ग्रुप लग गए, गोया कि आज तक उन्होंने नजारा देखा ही नहीं था। अरे कभी कभी जमातों में बुरकों के साथ औरतें जाती है तो ऐसे ऐसे देहातों में लोग देखने के लिए आ जाते हैं। अरे बोले ये कौन आ गए, पता नहीं क्या क्या अल्फाज कहते हैं। ठीक, तो अब जब हम इसके साथ चलेंगे ना, ये तो हुक्म है, तो उसके साथ लोगों को पता चलेगा। हम उनकी वजह से, इसकी वजह से उसको ना छोड़ दें कि क्या समझेंगे। हमें तो इसको दुनिया में रिवाज देना है। जब बातिल अपना काम कर रहा है तो हक वाले भी अपना काम करें, हक वाले भी अपना काम करेंगे। तो फरमाया उन्होंने ये नजारा देखा। तो यहां ताज्जुब की बात इसलिए है कि यहां पर हुकूमत मुसलमानों की थी, उस मुल्क में वो मुसलमान थे, क्या हुआ? बदल गए। मुझे हसरत इस बात की हुई कि मुझे अमेरिका में और यूरोप के बहुत से मुल्कों में जो कुफ्र के बड़े बड़े मराकिज है उनमें नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन कहीं भी नमाज इतनी इतनी अजनबी महसूस नहीं की गई जितनी उंदलुस के एयरपोर्ट पर महसूस की गई। अब अगर आदमी इस वजह से नमाज छोड़ दे कि अगर मैं यहां नमाज पढ़ूंगा तो ये लोग तमाशा बनाएंगे, बुरा समझेंगे, या नमाज पढ़ने से मेरी खिफत होगी यानी शर्म होगी, तो ये खतरनाक ख्याल है और ये तकब्बुर मा अल्लाह है। इसलिए हर जगह पर, चाहे हम कहीं भी हो, एयरपोर्ट पर हो, रेलवे स्टेशन पर हो, बस अड्डे पर हो, अजान देकर नमाज पढ़े। उसमें वो न समझे कि मेरा क्या होगा। बाज जगह नमाज को मौखर करना इसलिए जरूरी होता है कि नमाज पढ़ने से कहीं इस्लाम की गलत नुमाइंदगी न हो जाए। बाज जगह पर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं या उसको लेट कर रहे हैं तो उसमें भी देखो लोगों की वजह से नहीं, लोगों की वजह से नहीं, बल्कि कहीं इस्लाम को लोग गलत न समझे इसकी वजह से। मसलन देखो, उसकी भी मिसाल आ रही। मसलन एक शख्स रेलगाड़ी में सफर कर रहा है या जहाज में सफर कर रहा है और नमाज पढ़ने की इतनी जगह जरूरी है जिसमें आदमी सजदा कर सके, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए इतनी जगह हासिल करने के लिए दूसरों को तकलीफ पहुंचानी पड़ेगी या किसी को उसकी जगह से उठाना पड़ेगा, तो अगर इस तकलीफ से दूसरों को बचाने के लिए आदमी नमाज मौखर कर दे तो ये मौखर करना, लेट करना दुरुस्त है, اس لیے کہ دوسروں کو تکلیف دے کر نماز پڑھنے سے غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی غلط نمائندگی ہوگی، کیونکہ اسلام تو آیا ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور یہاں تکلیف پہنچاؤں گی، اب کسی کے راستے میں نماز پڑھ لیا اب اس کو گزرنا ہے تو کہے گا یار ایسا ان کا مذہب ہے کہ جو ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے. تو فرمایا غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی غلط نمائندگی ہوگی، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، لہذا اس وجہ سے نماز کا موخر کرنا صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یاد رکھو یہ وجوہات ہو، وہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو نماز چھوڑنا نہیں ہے، نماز کو لیٹ کرو، اس وقت پر نہیں ہو سکا تو پھر بعد میں کر لو، کیونکہ ابھی ہے ہی نہیں. تو بہرحال ایک انتہا تو یہ ہے کہ لوگ جہازوں میں نماز پڑھنے سے اس لیے گھبراتے ہیں کہیں دوسروں کے سامنے تماشا نہ بن جائے، اور نماز پڑھنے سے کہیں ہماری ذلت نہ ہو. العیاذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ تو تکبر مع اللہ ہے. دوسری انتہا وہ ہے جو اس واقعے سے سامنے آتی. واقعہ یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ جہاز میں سفر کر رہا تھا. جہاز بھی چھوٹا تھا اور سفر بھی صرف ایک گھنٹے کا تھا. نماز کا وقت آ گیا تھا، لیکن منزل پر پہنچ کر جہاز سے اتر کر آرام سے نماز پڑھ سکتے تھے، مگر میرے کچھ دوست جو میرے ساتھ تھے ان کا اصرار یہ تھا کہ نماز جہاز ہی میں پڑھنی ہے، یہاں وضو کرنا ہے، اذان دینی ہے، پھر جماعت سے نماز پڑھنی ہے. چنانچہ جب وضو کرنے کا ارادہ کیا تو جہاز کے عملے نے منع بھی کیا کہ یہاں وضو کرنا مشکل ہوگا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے اور اصرار کیا کہ ہم تو وضو کریں گے. چنانچہ دو آدمیوں نے غسل خانے میں جا کر اس شان سے وضو کیا کہ غسل خانے کا سارا فرش گیلا ہو گیا. اب دیکھو لوگوں کو تکلیف اور اس میں پانی بھر گیا، حالانکہ آدمی جب وضو کرے تو اس طرح وضو کرنا چاہیے کہ بعد میں آنے والے کو غسل خانے میں کے استعمال سے تکلیف نہ ہو، واش روم کے استعمال سے تکلیف نہ ہو. لیکن ان حضرات نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. اس کے بعد اذان دی اور پھر کہا کہ ہم تو جماعت سے نماز پڑھیں گے، اب کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، ان سب کے درمیان انہوں نے سب بنا کر نماز شروع کر دی. چونکہ بہرحال جہاز کے عملے کے لوگ مسلمان تھے، انہوں نے ان کی رعایت تو کی، لیکن ہر ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو انہوں نے کیا حرکت کی. اب دیکھو یہاں اسلام بدنام کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام زندہ کر رہے ہیں. اللہ ان کو فہم دے. ہے بازے جو یہ سمجھتے کہ ہم اسلام زندہ کر رہے ہیں حالانکہ وہ اسلام کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو کیا کہنے، حالانکہ ایک شیخ اور ایک بڑا عالم ان کے سامنے موجود ہے، ان کی بات کو سن کر عمل کرنا چاہیے، لیکن بازے ایسے ہوتے ہیں نا جو جذباتی ہوتے ہیں، بس اپنے دماغ میں جو آیا ویسا ہی کرنا. تو فرمایا کوئی جا رہا ہے، بہرحال تو انہوں نے کہ کیا حرکت کی ہے. اب اگر ایک گھنٹے کے بعد آرام سے منزل مقصود پر پہنچ کر وضو کر کے نماز پڑھ لیتے تو اس میں کیا حرج ہو جاتا، لیکن اس عمل کے نتیجے میں ایک ہنگامہ پیدا کر دیا. اس کے نتیجے میں غسل خانہ الگ خراب کیا، واش روم الگ خراب ہوا. اب جو شخص بھی واش روم میں جا رہا ہے وہ ان کو برا کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، اور لوگوں کا راستہ الگ بن کیا. میں نے ان کو سمجھایا کہ ابھی نماز کو رہنے دو اور میں بھی جہاز سے اتر کر نماز پڑھوں گا، لیکن ان لوگوں نے بالکل نہیں سنی. یہ دوسری انتہا ہے. ہاں عالم کی نہیں سنی، اور یہ جماعت والے ہوں گے اور کوئی نہیں، انہوں نے بتایا نہیں ہے. یہی لوگ ہوتے کہ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ نماز قضا نہیں ہو رہی تھی، اتر کر پڑھ سکتے. اور ہمیں جو ہدایت دی جاتی ہے بھائی کسی کو تکلیف نہ پہنچو اور نماز بھی قضا نہ ہو، تو ظاہر بات ہے اتر کر وقت رہتا تھا. اور ایک شیخ اور ایک عالم بیٹھا ہوا ہے، جب وہ اتر کر پڑھے گا، انہوں نے نہیں پڑھی، جب وہ اتر کر پڑھ رہے تو ہم بھی ان کے ساتھ پڑھ لیں گے. لیکن نہیں، بس کسی کی ماننی نہیں تو بہت ہی انتہا کر دیتے ہیں، تو جس سے اسلام بدنام ہوتا ہے. اس لیے ہمیں کام کرنا ہے، لیکن کام کو صحیح انداز سے پیش کرنا ہے، جذبات سے نہیں. اب اس میں دیکھو وضو بھی، وہ واش روم بھی خراب کیا، حالانکہ وضو میں استعمال ہدایت دیتے باعث ہیں، بلکہ یوں کہتے ہیں ریل کے اندر اگر پانی تھوڑا ہے تو پھر اس پانی کو تم استعمال کر کے ڈبہ کو دوسروں کو تکلیف پہنچے گی، تم انتظار کرو کہ آگے کہیں پانی ملے، اسٹیشن بڑا ہو وہاں اتر کر وضو کرو، یا کوئی بھر لو۔ تو یہ ساری چیزیں ہدایت، لیکن وہ ایک جذبات میں ہوتے ہیں۔ تو اس دوسری انتہا میں ہم جیسے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ یہاں ہوا تھا کہ ایک جماعت یہاں سے موزمبک سے چلی تھی، جا رہی تھی پاکستان کی طرف، کینیا ایئر لائن تھی۔ انہوں نے، کینیا ایئر لائن والے اسٹاف نے منع کیا کہ آپ نماز نہ پڑھو، اپنی منزل پر اتر کر، لیکن انہوں زبردستی کیا، اس سے ان کو بہت تکلیف ہوئی، جہاز کینیا میں اترا، ان سب کو اریسٹ کر دیا، بولے تم کو جانے نہیں دیں گے، کیس کر دیا۔ ہاں اب دیکھو، یہ اسلام سکھاتا ہے کہ تم دوسروں کو تکلیف پہنچ، ہاں وہ تو میرے سامنے کا قصہ ہے۔ پھر یہاں کے لوگوں نے وہ سمجھا بجھا کر، ان کا جرمانہ بھرنا پڑا، پتہ نہیں ایک ایک ساتھی کے کو $100 اس کے زیادہ، اور اس کے بعد پھر ان کو دوسری ٹکٹ لینی پڑی اور پھر گئے۔ تو یہ ایسے جذبات میں نہیں آیا کرتا۔ حالانکہ جب جب یعنی ہوائی جہاز کا جو اسٹاف ہے وہ منع کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو تو سب کو سنبھالنا ہے نا، تو بھی کہا نہیں ہم تو پڑھیں گے، تو یہ کیا بات ہے؟ تو ہمیں ان باتوں کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ جہاز کا عملہ ہمیشہ لوگوں کو جہاز میں وضو کرنے سے منع کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ شخص واش روم میں جا کر وضو کرے گا تو اس کو روک دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ جب یہ شخص وضو کرے گا تو سارا سارا واش روم خراب کر کے آئے گا۔ میں جہازوں میں اکثر سفر کرتا رہتا ہوں اور جہاز کے واش روم میں ہمیشہ وضو کرتا ہوں، مجھے آج تک کسی نے وضو کرنے سے منع نہیں کیا۔ وجہ اس کی ہے کہ میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں کہ جب میں وضو کر کے باہر نکلوں تو فرش پر، زمین پر پانی کی ایک چھینٹ بھی باقی نہ رہے، اور واش روم کا واش بیسن بالکل صاف ستھرا رہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھو یہ ہے، لہذا اگر ہم صفائی کا ذرا اہتمام کریں تو کوئی مشکل کام نہیں۔ اس واش روم میں تولیے موجود ہوتے ہیں، ٹیشو پیپر، ٹوائلٹ پیپر ہوتے ہیں، آدمی فرش اور واش بیسن کو ان سے صاف کر لے۔ لیکن ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ بس ہم تو اللہ فلا وضو کر کے آ گئے، اب بعد میں آنے والے پر کیا گزرے گی اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں، ہم اپنا کام کر کے نکل جائیں گے۔ ہاں ہر ایک کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھے، جس جگہ پر رہو، جس جگہ پر چلو، بیٹھو، کرو، تو ہر ایک کو دیکھو۔ دوہرا گناہ، حالانکہ اس گندگی کے نتیجے میں دوسروں کو تکلیف دینے کا گناہ الگ ہوگا۔ دیکھو، تو تم نے ایک عبادت کی لیکن دوسروں کو تکلیف پہنچائی، تو اب عبادت میں نور کیسے آئے گا؟ ہمارا اسلام سکھاتا ہے ہم عبادت کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تکلیف پہنچتی ہو تو، اگر ایسی عبادت ہو تو اس کو بعد میں کرے۔ فرائض میں سے ہے تو فرائض کو بھی مؤخر کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر نوافل ہے تو چھوڑنے کا حکم ہے، کہ دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ فرض ہے، تکلیف سے بچانا۔ تو فرمایا دوسروں کو تکلیف دینے کا گناہ الگ ہوگا، اور لوگوں کو اسلام سے اور دین کے شعائر سے متنفر کرنے کا گناہ الگ ہوگا۔ لوگ اسلام سے دور بھاگیں گے، اس کا گناہ الگ، تکلیف کا گناہ الگ۔ تو حدیث شریف میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما رہے ہیں، یسرو ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے دین کو آسان کرو، مشکل مت بناؤ، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، ان کے اندر نفرت مت پیدا کرو۔ جی اس کا جواب بعد میں دیں گے۔ آج ہم نے ان چیزوں کو دین سے خارج ہی کر دیا ہے، آج ہم نے ان چیزوں کو دین سے خارج ہی کر دیا ہے۔ آج ہماری مسجدوں کے غسل خانوں، بیت الخلاء کو جا کر دیکھو تو ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اندر داخل ہونا مشکل ہے، اور داخل ہونا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ یہاں تو متقی اور پارسا لوگ رہتے ہیں، یہاں رہنے والے علماء کرام ہیں، صوفیاء عظام ہیں، ان کو صفائی ستھرا سے کوئی تعلق نہیں۔ इसलिए उनका गुसल खाना गंदा है और उसमें दाखिल होना मुश्किल है। इन उलमा को ये ख्याल ही नहीं है कि ये भी कोई गुनाह का काम है या कोई नाजायज काम है। सफाई रखनी चाहिए। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह का वाक्या याद आया। वो ये कि एक मर्तबा हमने गुसल खाने को इस्तेमाल किया और उसको साफ किए बगैर, पानी बहाए बगैर बाहर आ गए। जब वालिद साहब को पता चला तो आपने हमें बुलाया और पूछा कि तुम क्या समझते हो कि तुमने मामूली हरकत की? तुम्हारी हरकत गुनाहे कबीरा है, तुम्हारी हरकत गुनाहे कबीरा है, इसलिए कि दूसरों को तकलीफ पहुंचाना गुनाहे कबीरा है और तुम ये समझ कर आ गए कि हमने कोई बुरा काम नहीं किया। ये तरबियत थी। हाँ, आज ऐसी ऐसी हम बहुत तकलीफ पहुंचा देते हैं, फिर क्या कहते हैं, हमसे तो कोई गुनाह होता ही नहीं। क्या ऐसे गुनाह नहीं होते हैं? इसलिए घरों के अंदर भी कोई चीज जहां रखी जा रही है, अगर उसको इस्तेमाल किया है तो वहां पर रखी जाए, और अगर न रखी गई तो दूसरों को पता है कि यहां रखी हुई होती है, उसने न उसको न मिली, अब उसको ढूंढने में जो तकलीफ होगी, ये इजाए मुस्लिम हुई, ये इजाए मुस्लिम हुआ, और ये भी गुनाह है, गुनाह एक कबीरा है, याद रखे। क्योंकि बाजी चीजों को तो कोई फिक्स नहीं, लेकिन बाजी चीजें अपनी जगह पर रहती है। अब अगर उसकी जगह बदल दी है तो ऐलान कर दो कि भाई देखो ये जगह यहां रहती थी, अब हमने सफाई की है, अब इसकी जगह पर यहां पर ये रख दिया है और ये चीज यहां पर आ गई है, तो ठीक है। तो देखो ये ऐलान करना भी इबादत है कि आपने क्यों किया, ताकि दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे। तो जो चीज जहां से ली जाए, अगर कहीं वैसे ही छोड़ दिया कहीं, तो दूसरों को तकलीफ होती है। तो ये भी आमतौर पर घरों में होता है, कभी खास करके मर्द हजरत कोई चीज ले लेते और कहीं भी रख देते, तो उसका ध्यान रखे, ये भी ईजा है, तकलीफ है। इस्लाम ने ऐसी ऐसी चीज भी सिखाई है। अल्लाह, देखिए ये जो काफिर और गैर मुस्लिम है, देखिए ये जो काफिर और गैर मुस्लिम है, उनको कुफ्र बाई से नफरत है, उनका कुफ्र बाई से नफरत है, लेकिन उन्होंने कुछ चीजें ऐसी इख्तियार कर ली जो हमारी थी। उन चीजों के इख्तियार करने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में उरूज और तरक्की दे दी। काफिरों को जो तरक्की दी है, वो चाहे उनका कुफ्र है नफरत के लायक, लेकिन उनकी बास चीजें जो इस्लाम की थी, जो उन्होंने ले ली, इसलिए अल्लाह ने उनको तरक्की दे दी। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह बड़े काम की बात फरमाया करते थे कि बातिल में ये ताकत नहीं कि वो उभर सके, याद रखो, बातिल में ये ताकत नहीं कि वो ऊपर आ सके। इन्नल बातिल कान ज़हूका, बातिल तो डूबने के लिए है और जलील होने के लिए है, उसमें उभरने की ताकत नहीं है, याद रखना। लिहाजा अगर तुम कभी ये देखो कि बातिल उभर रहा है, इज्जत हासिल कर रहा है, तो समझ लो कि कोई ना कोई हक चीज उसके साथ लग गई है, उसके साथ लग गई है, कोई हक चीज लग गई है, जिसने इस बातिल को उभार दिया है। हक के सहारे के बगैर बातिल कभी नहीं ऊपर आ सकता। कितनी पते की बात कही। तो इस्लाम तो पूरा का पूरा हक है, तो फिर मुसलमान कितना ऊंचा आ जाएगा? इसका मतलब इंसान जब मुसलमान जब नीचे गिरता है, तो मालूम हुआ कि कोई बातिल है इसके साथ लग गया। अब ये ढूंढना, इसी का तो नाम इसला है कि क्या बातिल लगा उनको। तो कोई हक, कभी कोई अखलाक अच्छे ले लेते हैं, अगर देखो आज उनके अंदर जरा सा किसी को एक धक्का भी लग जाता है तो कहते सॉरी फौरन। आप हवाई जहाज पर देखो, चलते चलते कुछ भी हो गया तो सॉरी करते हैं, और हम तो अगर चलते चलते लगे तो बोले क्या हुआ, दिखता नहीं है और आंखें निकालेंगे और पता नहीं वही जंग शुरू हो जाती। यहां तो कम होता है, हिंदुस्तान में बहुत देखा है। बस वैसे एक थोड़ा सा टक्कर पड़ तो बड़े झगड़ा हो गया, आंखों से देखी बातें सब। लिहाजा जितनी तरक्की याफ्ता कौमें जो आज दुनिया में तरक्की करती नजर आ रही है, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो या कोई और हो, ये तरक्की उनको उनके कुफ्र की वजह से और बातिल की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि उन्होंने कुछ अच्छे काम इख्तियार कर लिए। मसलन मेहनत, अमानत, दयानत, हुस्ने माशरत वगैरह, जो असल में इस्लाम की तालीमात थी, उनको इख्तियार कर लिया तो अल्लाह ताला ने उनको तरक्की दे दी और फरमाया कि ठीक है, तुमने अच्छा काम किया, उसका सिला हम तुम्हें दुनिया में दे देते हैं, आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। तो देखा अल्लाह, तो इसलिए देखो बहुत सारे इस्लामी अखलाक लोगों ने ले लिए, जिस जिस हुकूमत ने लिए है वो हुकूमत तरक्की कर रही। वमा लहू फिल आखरती मिन नसीब, हाँ उनको आखिरत में कुछ नहीं मिले, दुनिया में उन्होंने अच्छे अखलाक लिए हैं तो उस पर दुनिया में उनको तरक्की दे दी। अब एक किस्सा सुनो नसीहत वाला। हजरत फरमाते, मैं एक मरतबा बर्तानिया में रेल का सफर कर रहा था और बर्मंगम से एड एड मुमरा जा रहा था। मुमरा एड मुमरा, पता नहीं वहां के शहरों के नाम होंगे। 5-6 घंटे का सफर था बर्मिंगम से, हाँ बर्मिंगम से एड मुमरा, हाँ तो 5-6 घंटे का सफर था। रास्ते में मुझे गुसल खाना यानी वुजू खाना या वॉशरूम इस्तेमाल करने की जरूरत पेश आई। जब वहां गया तो मैंने देखा कि वॉशरूम में मशगूल है, यानी कोई अंदर गया हुआ कि तख्ती लगी हुई है। मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मैं फिर गया तो देखा कि फिर भी वहां पर तख्ती लगी हुई है, यानी वो लगा होता है रेड और ग्रीन का होता है, अंदर कोई गया होता है तो मशगूल है। तो फरमाया फिर भी मशगूल की तख्ती लगी हुई है, मैं फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद जब गया तो मैंने देखा कि अब खाली की तख्ती लगी हुई, लेकिन एक खातून बाहर इंतजार में खड़ी है, एक औरत बाहर इंतजार में खड़ी। मैं समझा कि शायद उन खातून को पता नहीं है कि ये वॉशरूम खाली है, इसलिए मैंने उन खातून से कहा कि गुसल खाना यानी वॉशरूम खाली है, आप जाना चाहे तो चली जाए। तो उस खातून ने कहा कि हाँ ये खाली है, मगर मैं इंतजार कर रही हूं। मैंने पूछा कि अब किसका इंतजार है। खातून ने कहा कि मैं अभी अंदर से फारिग होकर बाहर निकली हूं, लेकिन जिस वक्त मैं फारिग हुई ऐन उस वक्त गाड़ी स्टेशन पर रुक गई। मैं फारिग हुई तो उस वक्त में ये गाड़ी स्टेशन पर रुक गई, और कानूनी है कि जिस वक्त स्टेशन पर गाड़ी रुकी हुई हो उस वक्त फ्लश करना मना है, उस वक्त फ्लश करना मना है, इसलिए मैं इस वक्त फ्लश नहीं कर सकी। अब मैं गाड़ी के रवाना होने का इंतजार कर रही हूं ताकि जब स्टेशन से रवाना हो जाए तो उसके बाद फ्लश करूं और फिर अपनी सीट पर जाकर बैठूं, इसलिए इंतजार में खड़ी हूं। अल्लाह अकबर, क्या अखलाक है। खाली तो है लेकिन वो बाहर ही खड़ी है कि जब रेल चले किसी को तकलीफ न पहुंचे, फ्लश करके फिर मैं जाऊं, फिर दूसरा अंदर जाए कोई। देखो ये छोटी छोटी चीजें दिखने में है लेकिन वाकई में बहुत बड़ी बड़ी, ऐसी ऐसी चीजों का हमें ध्यान रखना है। जब मैंने उस खातून की बात सुनी तो मुझे बड़ी इबरत हुई कि देखो ये वो तालीम है जो हमारे हजरत वाली साहब ने फरमाई थी कि बगैर फ्लश के किए बैतुल खला से वापस आ जाना गुनाहे कबीरा है, क्योंकि इसके जरिए दूसरों को तकलीफ पहुंचती है। उस खातून ने एक तो इस बात का एहतमाम किया कि स्टेशन पर फ्लश न होने दिया। हमारे यहां कोई शख्स उसका एहतमाम करेगा? हालांकि हर वॉशरूम पर यह इबारत लिखी होती है कि जब तक गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो उस वक्त तक इसको इस्तेमाल न किया जाए, लेकिन कोई ध्यान नहीं करता। ये इसलिए लिखते हैं कि प्लेटफॉर्म पर हर वक्त लोग आते जाते रहते। देखो इनके अंदर इताअत कितनी थी, जो लिखा हुआ है वो कानून है, फरमाया इसका हमें इस पर फॉलो करना। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि इताअत, इसको कहेंगे इताअत, तो गैर लोग वो बाकायदा हर जगह पर अपना अपना एक लिख देते हैं, यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर कचरा डालना है, यहाँ पर गाड़ी ऐसी चलानी है, यहाँ पर, तो वो उसी को फॉलो करते करते चलते, इसको इताअत कहते हैं। ये इताअत इस्लाम में थी, उन्होंने जब कर दी तो वो तरक्की कर गए। और हम तो कहते हैं यार यहाँ पर रुकना, अरे चलता है, कोई देखता नहीं है, चलो। अल्लाह अकबर। तो ये इसलिए लिखते हैं कि प्लेटफॉर्म पर हर वक्त लोग आते जाते रहते हैं, अगर गाड़ी खड़ी होने के वक्त कोई शख्स वॉशरूम इस्तेमाल करेगा तो प्लेटफॉर्म पर गंदगी फैलेगी, उससे लोगों को तकलीफ होगी और सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, मगर हम में से कोई उसका लिहाज नहीं करता। और फिर इसका लिहाज न करने को कभी कोई शख्स ये भी नहीं समझता कि मैंने कोई गुनाह किया, उस गुनाह को गुनाह भी नहीं समझ, हालांकि इस एक अमल में कई गुना शामिल हो गए, इस एक अमल में कई गुना शामिल हो गए। एक गुना तो यह है कि जब आपकी वजह से ऐसी जगह पर गंदगी फैली जो लोगों की गुजरगाह है, तो उसकी वजह से लोगों को तकलीफ पहुंचेगी, एक गुना। दूसरा गुना यह है कि गाड़ी आपकी मिल्कियत नहीं है, बल्कि आप किराए देकर इसको सफर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा जिन शराइत पर आपको गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है, उनकी शराइत की पाबंदी आपके ऊपर लाजमी है। अगर आप उन शराइत के खिलाफ वर्जी करेंगे तो ये अक्द इजारा के खिलाफ वर्जी होगी, लिहाजा इन शराइत के खिलाफ आपके लिए इस गाड़ी को इस्तेमाल करना जायज नहीं होगा। तो ये गुनाह की नाफरमानी की। तो इन दो गुनाहों का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। अब अगर तुम्हारे इस अमल से बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंचेगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तो फिर किस किस से माफी मांगोगे? इसलिए ये गुनाह बड़ा संगीन है, लेकिन इस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा जाता, ये हम लोग दूसरी इंतहा को पहुंचे हुए है। इंतहा हो गई, उसकी बड़ी फिक्र करने की जरूरत है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें सही फिक्र अता फरमाए और सही फहम अता फरमाए। आमीन जी। ठीक है, थोड़ी मसाजिद के इस्तिंजा खानों का हाल। इस्लाम जो लताफत का, तहारत का, नजाफत का दीन था, आज हमने अपने तर्ज अमल से उस दीन को गंदगी का दीन बना दिया। बर्तानिया में खास तौर पर मंजर नजर आता है कि आप पूरे मुल्क में कहीं भी चले जाए, चाहे किसी ऑफिस में चले जाए, किसी तफरी गाह पर चले जाए, हर जगह आपको साफ सुथरे गुसल खाने वॉशरूम मिलेंगे, इल्ला माशाल्लाह। लेकिन अगर किसी मस्जिद के गुसल खाने में चले जाए, वॉशरूम में चले जाए, तो अलयाजु बिल्ला, अल्लाह की पना, उसमें दाखिल होना मुश्किल है। सिवाय चंद मसाजिद के जो बहुत अच्छी बनी हुई है, उनमें सफाई सुथराई का निजाम अच्छा है, बाकी अक्सर मसाजिद में सफाई का निजाम खराब है। और इस वक्त सिर्फ लंदन शहर में 250-300 मस्जिदें हैं, जबकि एक वक्त वो था कि नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती थी, लेकिन उनमें सफाई का एहतमाम नहीं है। और आज 300 मसाजिद है लेकिन सफाई का एहतमाम नहीं। पूरे लंदन में सबसे गंदा इलाका मस्जिद के वॉशरूम का है। इसके जरिए हम इस्लाम की गलत नुमाइंदगी कर रहे हैं। जो दीन तहारत का, नजाफत का, लताफत का दीन था, हम उसको हमने गंदगी का दीन बनाकर पेश कर दिया। मेरे वालिद माजिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा सुनाया करते थे कि दिल्ली की जामे मस्जिद में एक अंग्रेज मुसलमान हो गया। दिल्ली की जामे मस्जिद में एक अंग्रेज मुसलमान हो गया। अब मुसलमान होने के बाद नमाज पढ़ने के लिए जामे मस्जिद में आने लगा, उसने देखा कि वुजू खाने की नाली गंदी हो रही है। वुजू करने की जगह होती है, हौस था, हौस की वुजू। चंद रोज तक तो वो देखता रहा। जब किसी और ने सफाई नहीं की तो एक दिन वो झाड़ू लेकर आया और पानी डालकर उसकी सफाई शुरू कर दी। एक साहब वहां से गुजरे, उन्होंने देखा कि वो अंग्रेज नाली साफ कर रहा है, तो उन साहब ने कहा कि अंग्रेज मुसलमान तो हो गया लेकिन अभी अंग्रेजियत की खुशबू नहीं गई है। इन्ना लिल्लाह। अंग्रेजियत की बू, हालांकि अंग्रेजियत की बू नहीं है, वो तो इस्लाम है, वो तो सफाई पसंद है। तो फरमाया अंग्रेजियत की बू नहीं गई, मतलब ये था कि जो सफाई कर रहा है ये अंग्रेजियत की बू है। अल्लाह भाई, हम लोगों ने अपना एक गंदा हुलिया बना रखा है। ये फी नफसी नाजायज तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसके जरिए से इस्लाम की गलत तस्वीर लोगों के सामने आ रही है, जिसके नतीजे में लोग दीन के करीब आने के बजाय और दूर हो रहे हैं, लिहाजा हमें सफाई का और ज्यादा अहतमाम करना चाहिए ताकि इस्लाम की गलत नुमाइंदगी न हो। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है। मुराकबा कर ले।